हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 2-3 बजते ही माहिर ने फोन उठा लिया था। कहाँ हो तुम?
मैं तो अपार्टमेंट में ही हूँ सर, आप कहाँ हैं?
सम्राट की आवाज़ पहचान कर माहिर ने पूछा। मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में हूँ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आओ। पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर माहिर घबरा गया था। वो हवा की गति से गाड़ी लेकर आया और साथ में वकील को भी, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। पुलिस वालों ने माफ़ी मांगते हुए सम्राट को पहले ही छोड़ दिया था।
मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि पुलिस वाले डैड को कैसे जानते हैं।
गाड़ी में बैठते ही जो उलझन सम्राट के दिल में थी वो उसके होठों से निकल ही आई।
आपके पिता को कौन नहीं जानता सर, पूरे लंदन में उनके नाम का डंका बजता है,
वकील ने भी मुस्कुराते हुए कहा।
मेरे डैड? सम्राट ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा।
हाँ सर, पर पुलिस वाले को किसने बताया कि मैं अपने डैड का बेटा हूँ?
उन्होंने ना तो मेरे डैड का नाम पूछा और ना ही मेरा पता निकलवाया।
फिर? सम्राट को जबरदस्त हैरानी हो रही थी। उसके पिता नामी गिरामी बिजनेसमैन थे, राजनीति में आने की राह पर थे, पर इस अनजाने देश में उनकी इतनी अच्छी पकड़ होगी ये उसे नहीं पता था।
उसकी क्या जरूरत है सर? आपके हाव-भाव, चलने का ढंग, बोलने का तरीका, आपका रवैया, सब कुछ आपके उनके बेटे होने की बात कह देता है,
वकील ने कहा।
कमाल की बात है, मेरे डैड तो मुझे पूरे परिवार से अलग समझते हैं और मुझे अपने डैड की कार्बन कॉपी लगता हूँ,
सम्राट ने धीरे से कहा।
पर सर, आप पुलिस वालों के पास कैसे आए? क्या आप रास्ता भटक गए थे?
माहिर ने पूछा। जवाब में सम्राट ने उसे घूर कर देखा।
माहिर ने अपने होठों पर उंगली रख ली।
अगले ही पल वे सब सम्राट सिंह के अपार्टमेंट में थे, जहां सम्राट सिंह ने उस रिंग फाइटिंग के रास्ते पर मिले लड़के को कैद करके रखवाया था।
उस लड़के ने अपना मुंह खोला क्या? क्या बताया उसने एनिमी फॉरएवर के बारे में?
लिफ्ट का बटन दबाते हुए सम्राट ने पूछा।
माहिर ने इनकार में सिर हिला दिया।
सर, हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है।
तैयार नहीं था? अब तैयार हो जाएगा,
लिफ्ट से बाहर निकलते हुए सर्द आवाज में सम्राट ने कहा।
ये सुनकर माहिर कांप उठा।
सम्राट के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे।
फिलहाल के लिए तुम मेरे लिए एक फोन का इंतजाम कराओ और उसी नंबर की सिम लगवा कर लाना। तब तक मैं इसके मुंह से जानकारी निकलवाता हूँ और इस बात का ध्यान रखना कि मुझे कोई डिस्टर्ब न करे।
अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हुए सम्राट ने कहा।
माहिर ने हाँ में सिर हिलाया और तेजी से वहाँ से भाग गया।
वकील पहले ही जा चुका था। अब अपार्टमेंट में केवल दो लोग बचे हुए थे, वो लड़का और सम्राट।
लड़के को हॉल के बीचों बीच बांध कर रखा गया था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसका मुंह खुलवाने के लिए उसे बहुत मारा पीटा गया है।
सम्राट आगे बढ़कर लड़के को खोल दिया।
यू कैन गो नाउ,
सम्राट ने आराम से कहा।
वॉट? अंग्रेजी लड़का हैरान रह गया।
यस, पर मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, सम्राट ने एक लोगो लड़के के सामने रखते हुए कहा।
लड़के ने एक पल सम्राट को गौर से देखा और फिर पूछा।
सर, आप तो किसी की भी जानकारी निकलवा सकते हो, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो?
लड़के ने अदब से सिर झुकाते हुए कहा।
लड़के के बदले हुए तेवर को देखकर सम्राट हैरान रह गया, पर उसने अपनी हैरानी चेहरे पर नहीं झलकने दी।
मैंने तुमसे पूछा है, जानकारी मिलेगी या नहीं?
मिल जाएगी सर,
सम्राट ने हाँ में सिर हिलाया।
कुछ तो जरूर बड़ा झोल था जो ये लोग उसे कोई और समझ रहे थे, पर कौन और क्या समझ रहे थे, जिसे समझने में सम्राट उलझ रहा था। पर जो भी हो, उसे ये पहेली सुलझानी थी।
इधर राणा साहब को जवाब देने में आशुतोष सिंह राणावत उलझ रहे थे, पर उनकी ये उलझन सुलझने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि राणा साहब अब अपने सवाल के जवाब के लिए उनकी ओर ही देख रहे थे।
कहो विराट, सम्राट कहाँ है?
राणा साहब ने दोबारा विराट से पूछा।
विराट ने घबराहट से अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि आशुतोष जी ने गाड़ी में ही विराट को वार्न किया था कि सम्राट के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना है।
पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा था।
धड़कनों की आवाज़ इतनी तेज थी कि एक दूसरे की धड़कन घड़ी की सुई से भी तेज सबको सुनाई दे रही थी।
बताते क्यों नहीं हो, सम्राट कहाँ है?
अब की बार राणा साहब ने कुछ तेज आवाज़ में पूछा।
उसके बारे में कुछ न कहा जाए तो बेहतर होगा भाई साहब, जाने कहाँ अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है।
घर पर टिके तब तो कोई उसे कहीं साथ लेकर जाए या फिर उससे कोई काम कहा जाए।
उसकी बात आशुतोष सिंह राणावत की ओर से आया। आशुतोष की बात सुनकर राणा साहब ने एक तीखी नज़र समर्थ पर डाली और मुस्कुरा दिए। कभी कभी दाहिने हाथ को खबर नहीं होती कि बायां हाथ क्या कर रहा है आशुतोष। क्या मतलब भाई साहब? आशुतोष सिंह राणावत ने पूछा। जवाब में राणा साहब खुलकर हंस पड़े। दोनों हाथ तुम्हारे हैं आशुतोष, अपने दोनों हाथों पर नज़र बनाए रखो। क्या पता तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा बायां हाथ कुछ नहीं करता, लेकिन वो तुम्हारे दाहिने हाथ से कुछ ज्यादा ही काम करता हो। जिसे तुम नालायक और दोस्तों में मस्ती करने वाला कह रहे हो, क्या पता उसी ने तुम्हारे घर को संभाल रखा हो। नीज के पत्थर कभी भी किसी को दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन सच्चाई यही होती है कि उन्होंने पूरे घर के बोझ को संभाल रखा होता है। चलो खैर, छोड़ो इन सब बातों को। मैंने तुम लोगों को जिस चीज के लिए इस डिनर पार्टी में बुलाया था, मैं उस मामले पर आता हूँ। अमरकांत सिंह राणा ने दोनों तरफ अपनी नज़र घुमाते हुए कहा। प्रारब्ध सिंह राठौर और आशुतोष सिंह राणावत सीधे होकर बैठ गए और दोनों के कान अमरकांत सिंह राणा की अगली बात को सुनने के लिए लगे थे।